और इसके बाद है आयत 87 में, फतह ससू हा सीन सीन, बैरूनी हालात मालूम करने की कोशिश करना, ये पसंदीदा सिफ्त है। और आपको पता है ना कि एक जो है वो लफ्ज के फर्क से, एक हरफ के फर्क से मानी में तब्दीली हो जाती है, जैसे फहससु और दूसरा है फतजससु। और जीन सीन सीन जो है इसके मानी क्या है, तजस्सुस करना, अंदरूनी हालात मालूम करने की कोशिश करना, और फतहससु क्या मानी है, बैरूनी हालात मालूम करने की कोशिश करना। ते असु जो है या हमजा सीन, और इसके माने क्या है, मायूस होना, और नहीं मायूस हो मिर रोहिल्ला, अल्लाह की रहमत से। तो रोह का जो लफ्ज है, हाँ ये ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी आया था, और ये लफ्ज कुरान में मुख्तलिफ मानी में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। मसलन आप देखें कि रोह खुशगवार हवा को भी कहते हैं, जैसे ना खुशगवार जो हवाएं हैं, एक रौह लफ्ज है उसके लिए, जैसे रहमत खुशी है ना, और इसी तरह यौमुर रौहुन खुशगवार दिन। तो मुफस्सरीन ये कहते हैं कि रूह और रौह एक ही लफ्ज है। तो रूह जो है ना, इसका इतलाक सांस पर होता है, किसी शख्स का सांस लेना, अराहल इंसान, और राहत हासिल करना, ये भी होता है। और रूह के मानी पर अगर गौर करेंगे आप तो अंदाजा भी होता है ना कि अल्लाह के एहसानात और इनामात की बारिश जो मसलसल जारी है इंसान पर, तो उस वो इंसान के लिए आराम और रहमत का जरिया बनती है ना। तो सांस लेता है जो इंसान, अल्लाह की रहमत है, सांस ना हो तो रूह खत्म, रूह गई है ना। तो रूह रौह एक ही मानी है। तो वैसे खुशगवार हवाओं के लिए रेहान भी एक है, मुबशरात भी एक है, और लवाकेहा भी है। तो इसी तरह हवा के लिए एक मारूफ लफ्ज है रीह का। तो रीह जो है इसके मानी क्या है, हवा हरकत करना, वसी मानों में ये कुरान में इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो रौ है हवा के मानी में भी है, हरकत के मानी में भी है, और खुशबू के मानी में भी है। ला अजीदु रीह यूसुफ, कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। ला अजीदु रीहा यूसुफ, तो वहां पे ये खुशबू के मानी में भी है। और तीसरा इसके मानी है एक रोब दबदबा, या पीछे पड़ चुकी हैं कि वला तनाजाऊ फतफशलू व तजहबा रीहुकुम, सूरत नंबर 8 में आयत नंबर 46 है, और आपस में झगड़ा न करना वरना बुजदिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। तो वहां पे री जो है वो इस मानी में इस्तेमाल हुआ है, रोब दबदबे के मानी में, के तजहबा रीहुकुम। और आपको मैंने एक और अहम बात बताई थी कि रीह की जमा रिया है, रियाह। जब इरसालु रियाह का लफ्ज आए, यानी रियाह का, वहां रहमत की हवाएं मुराद होता है, और अगर इरसालु रीह आए तो वाहिद का सीगा जब रीह का आता है तो अजाब की हवाएं मुराद होती हैं। समझ आ गई बात की? अगर रियाह आए है तो हवाएं, कौन सी हवाएं मुराद हैं, खुशगवार रहमत की। अगर जो है वो रीह आए तो कौन सी हवाएं, हवा मुराद है, अजाब की। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, रौह के मानी पढ़ रहे थे। समझ आ गई ना, ये रहमत के लिए, यहाँ पे ये रहमत है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अगर रूह का तर्जमा है, रूट है, तो वो भी यही है, हवा का है तो वो भी यही है ना। रीह के लिए भी रावो हा है, फिर दोबारा रौहिल्ला है, फिर इसके बाद आप देखें तो मुजातिन जा जीम वो, इसका मानी है चलाना, और इसके मानी है मुज्जा के रद्दी, बहुत ही कोई हकीर जो चीज होती है उसके लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, कि जो चीज बहुत ही निकम्मी है, खराब है, तो उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो नकम्मी और रद्दी चीज के लिए हमें और लफ्ज भी मिलते हैं है ना, लेकिन खास तौर पर ये लफ्ज जो है जा जीम वो, ये ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी रद्दी चीज के लिए जो कि जो है जिसको कोई भी काबले इल्तफात ही ना समझे, बहुत ही जैसे नकारा और बहुत ही खराब सी चीज। वैसे नक्स का एक लफ्ज भी पाया जाता है, बख्स का लफ्ज भी पाया जाता है रद्दी के लिए, है ना, आप पहले पढ़ चुकी हैं। तो अदना भी है, खबीस भी है, ये सारे लफ्ज हैं रद्दी के लिए। लेकिन नकेदा इसका पहला दर्जा है, नून काफ दाल, ये भी रद्दी के लिए है, थोड़ी मुश्किल से हासिल होने वाली और रद्दी चीज। और फिर नक्स जो है वो ऐबदार चीज को कहते हैं, जो ना मुकम्मल है जिसके। फिर बक्स घटिया और रद्दी चीज को कहते हैं, और खबीस गंदी भी हो और नापाक भी हो, नापाक हो, गंदी हो या हराम हो। अदना क्या होता है, किसी आला चीज के मुकाबले में अदना हो सकता है, वैसे वो इतनी रद्दी ना हो लेकिन आला के मुकाबले में अदना है। मुजात क्या है, ऐसी रद्दी जिसे लेने को कोई तैयार ही नहीं है, है ना, दफा करना, वापस करना, जैसे ना चल चलाओ कर देना, चलाना, चला देते हैं आप उस चीज को, रद्दी है, निकाल दिया। तो यहाँ पे भी ये रद्दी के माने में इस्तेमाल हुआ है। फिर आगे है मुतसद्दिकीन, सिद्क सच्चाई से है, सदका खैरात से भी है और नेकी से भी है। फिर इसके बाद है आयत 91 में, ता लाही, ता जो है वो कसम के लिए, सिर्फ ता कसम के लिए आता है, वो कसम के लिए आता है। आसारा का अलिफ सारा कदम निशानी के लिए आता है और तरजीह देना, आप उससे याद रखें, वो सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कि वो दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं, खुद वो कितने ही तंगी में, भूख में क्यों ना हो, है ना। तो इसार करना वो भी इसी से है। फिर इसके बाद है तसरीब, आयत 92 में, और तसरीब जो है साराबा, बुरा भला कहना, गिरफ्त करना, मलामत के अलावा डांट डपट भी करना। साराबा क्या है, मलामत के अलावा डांट डपट भी करना। और आयत नंबर 94 में आप पढ़ी चुकी हैं पहले भी, अल ईरू आया है, तो अल ईरू का रूपट क्या है, आयन यारा। ये वो काफला, मतलब जो काफला जा रहा होता है साजो सामान लेकर, उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, जिसमें जैसे ऊंट भी हैं, और गल्ला बरदार ऊंटों के लिए भी और जो लोग उनके साथ होते हैं उनके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। ला अजिदू का मादा क्या है, वो जीम दाल, रीह इसका मादा क्या है, रा वो हा। अभी तो मैंने बताया आपको कि रीह का मादा भी रा वो हा है, और रूह का, रोह का मादा भी रा वो हा है। तीसरा है तुफन्नदून, वैसे अगर मैं कहूँ ये आप पढ़ चुकी हैं तो ये सही बात है, पढ़ चुकी हैं। तुफन्नदून मजाक उड़ाने की का तीसरा दर्जा है, और मजाक के लिए आप दो लफ्ज पहले भी पढ़ चुकी हैं, एक है यस्ताज़ेऊन, हाजा, हमजा, और ये होता है अंदरूनी मजाक उड़ाना। और सखर, सीन खारा जो है ये क्या होता है कि बैरूनी तौर पर पता चलता है, आप किसी का ऐब भी बयान करते हैं और फिर हकारत से मजाक उड़ाते हैं, यस मस्खरापन करना ना। और तीसरा है तुफन्नदून, फानून दाल, इसके मानी है राय की कमजोरी, बूढ़े की बातों को अनहोनी समझकर मजाक उड़ाना, कि तुम तो सिठिया ही गए हो ना। तुफन्नदून, फा नून दाल। फिर इसके बाद है लफी दलाल कल कदीम, दलाल, हाँ ये गुमराह होने के मानी में भी, दालीन के मानी में भी इस्तेमाल होता है, और गुमशुदा, रास्ता ना पाना, उसके लिए भी आता है। फिर है आयत 96 में फरतद्दा, रा दाल दाल, रद, और इरतद्दा होता है फिरना, लौटना, तो फरतद्दा बसीरा, लौट आएगी नजर, बिनाई लौट आई। फिर है 97, इस्तग़फिर लना, क्या मादा है, गैन फारा, ढांप लेना, ज़ुनूबना, क्या मादा है, ज़ाल नून बा, ज़नबुन। और इसके लिए और कोई इसकी फैमिली का लफ्ज बताएं, इस्म, बड़ा मारूफ है, आपको पता ही है कि गुनाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये दोनों ही गुनाह के लिए हैं। आयत 99 है, उसमें लफ्ज है आवा, क्या मादा है, अलिफ वोया, अलिफ वोया, आवा, आबाद करना, पनाह देना। फिर उसके बाद है आयत नंबर 99 आमिनीन क्या मादा है? हाँ, हमजा मीमनून अमन से है, बल्कि अलिफ मीमनून अमन, ईमान लाना या फिर ट्रस्ट करना, भरोसा करना। अबा वैन था 100 में, अबा वैन, और असल में अबुन का ही अबा वैन हो गया कि दोनों, लेकिन माँ बाप दोनों मुराद है, वालदेन मुराद है। और खर्रू खारारा, इसके मानी है गिरना। आप बता सकती हैं कि गिरना जो है इसके लिए कोई और लफ्ज भी आपने पढ़ा हुआ है इसकी फैमिली? सुकीता, सकता। आप ये माजी मजहूल है इसलिए सुकीता है, बस वरना सकता। शाबाश। तो सीन काफ तोये जो होता है क्या है कि ऊपर से चीज का गिरना। और हबत अभी पढ़ा है, या ए बितू तुम सब उतरो, तो तकलीफ से गिरना है ना, उनको कह दिया गया नीचे चले जाओ। और इसी तरह सूरत तौबा में आपने पढ़ा है हार लफ्ज, हा है ना, हा अलिफ रा, किसी चीज के कुछ हिस्से का दूसरे पर गिरना, दीवार का एक हिस्सा दूसरे पर गिर जाए, है ना, बुनियान इमारत दूसरे पर कुछ गिर गई। तो बहरहाल खर्रा फिर क्या हुआ? इस्तराब और आवाज के साथ किसी चीज का गिरना, आवाज और इस्तराब के साथ किसी चीज का गिरना। वैसे गिरने के लिए कुरान में बहुत से लफ्ज है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को दोबारा दोहराया है जो आप पढ़ भी चुकी हैं। फिर है सुज्जादा, सीन जीम दाल, और सीन जीम दाल जो है इसके जो लफ्जी मानी है ना, लफ्जी मानी है झुकना, जिसको इंग्लिश में बी और डब्ल्यू कहते हैं, वो तो यानी किसी का शुक्रिया अदा करने के लिए, किसी का इस्तकबाल करने के लिए, किसी को सलाम करने के लिए थोड़ा सा इंसान जो झुक जाए उसके लिए आता है। लेकिन इसकी टर्मिनोलॉजी यानी वैसे इस्तलाही मानी में हमारे यहाँ जो सजदा मुराद लिया जाता है, तो कौन सा क्या सजदे से मुराद है? हाथ घुटने और पेशानी जमीन पर टकाना, सब कुछ जमीन पर लगाना तो सजदा है। फिर इसके बाद है तावील, क्या मादा है इसका? अलिफ व लाम। रो या क्या मादा है? रा हमजा या। फिर इसके बाद है आयत 100, और इसमें लफ्ज है सिजन, सीन जीम नून, सिजन किसे कहते हैं? हाँ, जुर्म की सजा साबित होने के बाद किसी को कैद में डाल देना, तो सिजन उसका लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा बदवी, यही इसका मादा है। हाँ, बदवी जो है यानी बद्दू को भी कहते हैं, और इसके अलावा जो गांव का इलाका है उसके लिए भी। नजागा नून जागैन, फसाद डालना। फसाद के लिए आप दो लफ्ज पहले पढ़ चुके हैं, एक है मुफसिदीन, फसादा फसाद करना, वला तासो फिल अर्दे मुफसिदीन। तो तासो ऐन सा अलिफ भी मैंने बताया था मादा है, और ऐन हाँ ऐन सा अलिफ और ऐन अलिफ सा, अच्छा दोनों तरह ही आप, हाँ दोनों तरह मैंने, हाँ दोनों तरह ये मादा है। और इसके मानी क्या थे? हिस्सी फसाद या फिर मादी फसाद, है ना, तो फसाद से अगला दर्जा है ना ये वाला। और नजागा जो है ये भी फसाद डालना है, मदाखलत करना है। मानी क्या होते हैं? कैसे मदाखलत करना, यानी सिर्फ फसाद नहीं डालना, एक या एक से ज्यादा में मुदाखलत करना, फिर लड़ाई करवाना। नजागा क्या है कि पहले मुदाखलत करना, एक में या दो में या चार जो भी लोग हैं उनमें मुदाखलत करना, फिर उनमें लड़ाई डलवाना। जैसे किसी की तलाक हो गई है तो पहले मुदाखलत की, झगड़ा कराया, फिर तलाक ही करा दी, है ना, तो नजागा लड़ाई करा दी, पिटवा दिया किसी को, किसी भी मानी में इस्तेमाल किया जाता है। और फिर उसके बाद है तवफ्फानी का मादा क्या है? वफा या। और इसके बाद है आयत नंबर 102, यम कुरून मीम काफरा, मकर से है। और इसका लफ्ज आपने क्या पढ़ा है? कैद पढ़ा है, हीला पढ़ा है, मकर हीला कैद, ये सारे लफ्ज आप पढ़ चुकी हैं। और हरस्ता, हरस्ता जो है मादा क्या है? हारासा, हिर सोना, तमा उम्मीद। आयत 105 में काइन है, क्या मादा है? नहीं, अयू से है ये, अयू अलिफ या अयू, कौन काइन, कितने ही, काइन कितने, ठीक है, साथ का आप भी लग जाता है ना, जैसे वो जैसे माने कितने के मानी देता है। बहरहाल मादा क्या है? अलिफ या यमुरूना मीम रारा गुजरना। मोरेदून का मादा क्या है? ऐन रा द्वाद। पेश करना भी और इराज करना भी। फिर इसके बाद है आयत 107 गाशियातुन। मादा क्या है? गैन शीन या गशी, ढांप लेना। गाशिया किसका नाम है? कयामत का। अगर आपको कयामत लफ्ज दे दिया जाए और कहा कहा जाए कि इसके सिमिलर वर्ड बताएं तो आपको आने चाहिए। कयामत है, गाशिया है, कारिया है, सा है ना। जहनू लफ्ज दे दिया जाए उसके सिमिलर बताएं, आने चाहिए। अब आपको कुरान लफ्ज दे दिया उसके आने चाहिए ना। जिक्र अल्लाह ताला ने कहा, मुबीन अल्लाह ताला ने उसको कहा, हाँ, अल किताब कहा, अल फुरकान कहा, ये मैंने आपको बताए थे ना। अच्छा फिर इसके बाद है, अब आप देखें, गाशिया तुम मिन अज़ाब अल्लाह औतातिया मुसातु सातु कयामत के लिए आता है। और सीन आइन का। फिर बग्ता तन का मादा क्या है?
बग्ता
बागनता। इस अचानक के लिए बग्तन इस्तेमाल होता है। या शुरून का मादा क्या है? जरा जान से बोले, क्या है? शीन आइन रा। फिर इसके बाद है आयत नंबर 109 में अलकुरा। अलकुरा का मादा क्या है? काफरा या शाबाश। तो काफरा या वाहिद है, और नहीं बल्कि करिया, करिया तो वाहिद है, और कुरा यहाँ पे ये जमा है। यहाँ पे अलकुरा क्या है? जमा है। और इज़िस्ते असा या हमजा सीन, मायूस होना। वजन्नू मानी क्या है? जन्नू गुमान करना। और अगर मैं कहूँ वजन्नू अन्ना हूँ, यकीन करना, यकीन के मानी देता है। और फनुजिया मादा क्या है? नून जीम वाव, निजात देना। और युफ्तरा मादा क्या है? फाराया, काटना है ना, चमड़े को दुरुस्त करने के लिए काटना। लेकिन ज्यादातर क्या है कि खराब करना फिर उसको। तो ज्यादातर ये इस तरह जो है वो बुरे मानी में इस्तेमाल किया जाता है, बोहतान लगाना। और तस्दीक मादा क्या है? तफसील मादा क्या है? फास्वात लाम। और रहमतल कौमी यूमिनून, यूमिनून का मादा क्या है? हमजा मीनून। सूरत यूसुफ आयत नंबर 83 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फ़सबरुन जमील असल्लाहु अन यातियनी बिहिम जमीआ इन्नहु वल अलीमुल हकीम। आप देखिए कि याकूब अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे बिन्यामीन जो हैं वो मिस्र में गिरफ्तार हो जाते हैं। भाई वतन वापस आते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम को सारी कहानी सुनाते हैं और यकीन दिलाते हैं कि जो बात हम बता रहे हैं वो बिल्कुल सच्ची है, और आप काफले वालों से पूछ लें, आप मिस्र की बस्ती वालों से पूछ लें, और आप ये भी उन लोगों से पूछ लें कि वाकई बिन्यामीन जो हैं वो चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर दिए गए हैं और वो उसमें पकड़े गए हैं। अब आप देखें कि चूंकि याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटे जो हैं उनसे पहले ये साबित हो चुका था कि इन्होंने झूठ बोला है, कि वो जो कुर्ता लेकर आए थे और कहा था कि उसको भेड़िए ने जो है वो खा लिया है, तो अब भी उनको जो है ना यकीन नहीं आता। और क्या जवाब देते हैं? क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, कि इस बात को भी तुम्हारे नफ्स ने इसको बहुत मुज़य्यन करके दिखा दिया। सव्वलत, जैसा कि आपको पता ही है कि किसी काम को इतना खूबसूरत बनाकर दिखाना कि वो बुरा भी हो, लेकिन इतना खूबसूरत बनाकर दिखाना कि बुरा ही ना लगे। और असल में ये जो सीन वो लाम है, पेट का नाफ के नीचे से ढीला होना। वैसे तो पेट एक बैलेंस होता है ना, और अगर नाफ के नीचे से ढीला हो जाए तो क्या मानी है कि नफ्स का या शैतान का गुनाह की बात को ढीला करके, कमजोर करके इस तरह दिखाना कि गुनाह ही ना लगे, कि गुनाह गुनाह ना लगे, महसूस ही ना हो। पहले जो है ये बात के भेड़िए ने जो है वो यूसुफ को खा लिया, और अब ये बात के चोरी के जुर्म में जो है वो बिन्यामीन गिरफ्तार हो गए, और वही आप कलमात दोहराते हैं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की गुमशुदगी के वक्त आपने फरमाए थे, और वो क्या है, बल सवलत लकुम अनफुसुकुम अमरो फसबरुन जमील। तो उनसे ये बात बताते हैं कि ये शैतान ने इस काम को भी तुम्हारी निगाहों में इतना खूबसूरत करके दिखाया कि तुम ये काम भी कर गुजरे, तुम्हारे लिए इस काम को आसान कर दिया, तुम्हारी निगाहों में इस काम को भी मुजयन करके दिखा दिया, और आप सोचें कि साथ ही क्या कहते हैं, फसबरुन जमील। और आपको पता ही है कि सबरुन जमील कौन सा सबर होता है, कि इस सारे गम के ओछे तरीके इख्तियार न किए जाएं, ना वावेला ना मातम ना पीटना अपने आप को, और ना ही कोई ऐसे जुमले बोलना जिससे जो है वो शिकवा और शिकायत हो। तो क्या कहते हैं, फसबरुन जमील। आम तौर पे जिंदगी में जब भी मुख्तलिफ आजमाइशें जो हैं वो आती हैं और मुख्तलिफ मुसीबतों से इंसान दो चार होता है, तो उस वक्त मातम करना, मारना पीटना, वावेला मचाना, शोर करना, ना शुक्री के जुमले बोलना, ये सब कर करा के फिर कहते हैं कि हम सबर कर लेते हैं। तो सबर दुनिया कर ही लिया करती है, लेकिन सब्रे जमील उस सबर को कहते हैं कि जो गम को इस तरह बर्दाश्त किया जाए कि ना जबान पर हर्फे शिकायत आए, ना हाथ पांव जो है उसे कोई खिलाफे वकार हरकत सरजत हो, कोई भी जो है वो निशुकरी जो है वो उसमें ना पाई जाए। और साथ ही आप देखें कि उम्मीद का एक ठाठे मारता हुआ समंदर है, इस मौके पर जबकि दूसरा बेटा जुदा हुआ है, अब भी दिल बड़ी उम्मीद के साथ जो है वो जवान है, और उम्मीद बड़े जोरों पर है, और वो उम्मीद क्या है, जमिया, कि हो सकता है कि अल्लाह याती कि वो उनको जमा कर दे, बेहिम इन सबको, किनको, यूसुफ को, बिन्यामीन को और रूबीन को भी, जो तीसरा बेटा भी रह गया था ना, उन सबको जमा कर दे। और कौन जमा करेगा, अल्लाह ताला। और आप देखिए इससे क्या बात पता चलती है कि इस गम के मौके पर, इस सदमे की दूसरी बड़ी चोट के मौके पर वो क्या कहते हैं कि मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं, और अल्लाह ताला हो सकता है कि इन सबको मेरे पास जमा कर दे। तो इस सबब फिर क्या है कि आजमाइश की शिद्दत में भी अल्लाह से रहमत की उम्मीद रखी जाए। आजमाइशों की शिद्दत में, जब आजमाइशों की भट्टी में इंसान डाला गया हो, तो भी उसको अल्लाह से रहमत की उम्मीद की गिजा मिले, कुवत मिले। और जो अल्लाह वाले होते हैं ना, अल्लाह जब अपने बंदों को आजमाता है तो उस वक्त भी वो ये बात देखते हैं, गो कि ये मामला हमारी ताकत से बाहर है, लेकिन वो साथ ही इस बात के मुंतजिर होते हैं कि जरूर इस रात की सुबह जो है वो नमूदार होगी, तुलू होगी। हर रात की एक सुबह होती है, और जब भी कभी कोई गम, कोई मुसीबत, कोई तंगी, परेशानी अपनी पुरूज पर पहुंचती है, बाम पर पहुंचती है, एक्सट्रीम पर पहुंचती है, तो वहीं से उसका ना एंड शुरू हो जाता है, वहीं से जो है वो उसकी क्या होती है, फिर अल्लाह ताला वो तंगी को खत्म करके वुस्सत पैदा कर देते हैं। और यहाँ पे भी यही सबक दिया जा रहा है कि करीब है कि मेरा अल्लाह उन सबको मेरे साथ सबको इकट्ठा करके मुझसे मिला दे, क्यों, इन्नहु वल अलीमुल हकीम, क्योंकि वो सब कुछ जानता है और उसके सारे काम बड़े ही हिकमत वाले हैं। तो अब आप देख लीजिए कि बुढ़ापा है, लंबी जुदाई है, और मामला ताकत से बाहर हो रहा है, लेकिन अब भी वो पुरउम्मीद हैं, अब भी वो अल्लाह से रहमत की उम्मीद रखते हैं, और क्या समझ रहे हैं कि मेरा रब जो इल्म और हकूमत का मालिक है, जिसके फैसले इल्म और हिकमत पर मबनी हैं, मैं उसी पर जो है वो भरोसा करता हूं, मुझे उम्मीद है कि मेरा रब जो है वो मुझे उससे जो है उन सबसे जो है वो मिलवा देगा। तो ये है याकूब अलैहिस्सलाम का किरदार जो मेरे और आपके लिए एक मिसाल है, एक उसवा है। कितनी ही परेशानी में क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह से लौ लगाना, अल्लाह से उम्मीद रखना, अल्लाह से ताल्लुक कायम रखना और अल्लाह रब्बुल इज्जत से ही जो है वो उम्मीदें ऐसे रखना कि अल्लाह कभी भी मुझे जो है ना मायूस नहीं लुटाएगा, कभी भी मुझे नाकाम और ना मुराद नहीं लुटाएगा। अब फिर क्या करते हैं, उनको तो ये बात कहते हैं वतवल्ला अनहुम और उनसे रुख मोड़ लेते हैं। फिर वो इनकी तरफ से मुंह फेर कर बैठ गया। वकाल या सफा अला यूसुफ वबयदत ऐनाहु मिनल हुज्न फहुवा कज़ीम। वकाल या असफा अला यूसुफ और कहने लगे हाय यूसुफ। आप देखें कि पहली चोट थी यूसुफ की, अब दूसरी चोट लगी जो है वो बिन्यामीन की। और इस मौके पर ये चोट लगते ही फौरन जो है वो उनको अपना पहला बेटा जो है वो याद आता है। अब इस सदमे के वक्त अपने बेटों से जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसको छोड़ देते हैं। वतवल्ला अनहुम, उनसे जो है गुफ्तगू को छोड़कर अपना रुख मोड़कर अपने रब से जो है वो फरियाद शुरू करते हैं और कहते हैं या सफा अला यूसुफ, हाय यूसुफ। वबयदत ऐनाहु मिनल हुज्नी और उनकी आंखें सफेद हो गई थी गम से। अब आप देखें कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सदमे से आंखों की स्याही मारे गम के सफेदी में बदल गई। और जैसे बालों की स्याही जो है वो सदमे परेशानियां मुसीबतें धूप इंसान को उसकी कालों को सफेदी में बदल देती है, आंखों की जो थी स्याही वो सफेदी में बदल गई। ये कुरान बता रहा है कि इतने शदीद गम में थे, इतने अजुर्दा हुए, अलग होकर गोशे में जा बैठे और यूसुफ के गम को मजीद शिद्दत से याद करने लगे। उस यानी वो गम मजीद शिद्दत से ताजा हो गया और इस शिद्दत गम में इनकी जबान से हाय यूसुफ के अल्फाज बेसाख्ता निकल गए। जैसे शिद्दत गम या बहुत ज्यादा रोने से इंसान की सेहत मुतासिर होती है और बाज लोगों की तो जैसे आंखें ही जाती रहती हैं हर वक्त के रोने से, या जो है वो सर जो है वो भारी हो जाता है। तो अब क्योंकि पहले क्या है कि गम की जो जब इंसान पे कैफियत तारी होती है तो आप उसको दिल में रखते हैं, दिल बोझल होता है, दिल घुटा घुटा रहता है, सीना जो है वो उसकी वजह से गम के दबाए रखने से घुटा घुटा रहता है। और क्या होता है कि फिर उसके बाद जो है उसके दिल में इंसान के जज्बात का एक तलातुम होता है, एक तूफान होता है कि क्या हुआ, कैसे हो गया, कहाँ होगा, किस हाल में होगा, पता नहीं खाया होगा, पिया होगा, पता नहीं किन हाथों में लगा होगा, है ना। और बाज मुफस्सरीन ये भी कहते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से गैर मामूली मोहब्बत करते थे और उनकी जुदाई पर आपको गैर मामूली गम क्यों हुआ, क्योंकि वो ख्वाब जो देखा था और आप पैगंबर थे, उनसे आपको बहुत उम्मीद भी थी। और गो के ऐसा नहीं था कि गुम होने से वो जो ख्वाब था वो पूरा नहीं होना था, आप तो पैगंबर थे, आपको यकीन था कि ऐसा होगा। लेकिन एक और बात भी मुफस्सरीन बताते हैं, वो ये है कि इनको ये गम था कि पता नहीं जो है उसका दीन किस हालत में है, उसके ईमान का क्या हाल है, कि किन हाथों में लगा और कहां से कहां जो है वो चला ना गया हो। बाज लोग कहते हैं 40 साल और बाज कहते हैं कि 80 साल आप मसलसल रोते रहे, यहां तक कि बिनाई जाती रही। तो गोया के एक लंबा जमाना है जो आपने बेटे की जुदाई में रो रो कर जो है वो गुजारा है। और यहां पे देखे हुज्न, और इतना ही काफी था कि या असफा अला यूसुफ और इतना ही काफी था वतवल्ला अनहुम। ऐसा होता है ना कि घर में भी कभी कोई सदमा, कोई तकलीफ, कोई बात सुनी जाए तो होता है कि कोई मुझसे अब बात ना करे, मैं किसी को नहीं देखना चाहती, कोई मुझसे बोले नहीं, लोग तन्हाई और खलवत जो है उसको फिर पसंद करने लगते हैं, अलग हो जाते हैं, मिलना जुलना बातचीत करना जो है वो पसंद नहीं करते। और फिर ये कि मुंह से जुमलों का निकलना, फिर ये कि आंखों का सफेद होना, और वो भी किसे, हुज्न, गम से। और अगला जो आखिरी 84 आयत के आखिरी अल्फाज हैं, फहुआ कजीम, इससे ये बात पता चलती है कि उनका सबर का, उनके पास सबर का आला दर्जा था, वो उसके बामे उरूज पर थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। क्यों? कुरान ने यहाँ पर कजीम का लफ्ज बोल कर जो है उनकी हालत जो है उसको बयान किया है। और आप देखिए कि कजीम जो है इसके मानी क्या है, कि वो फिर खामोश हो गए, फिर वो किसी से कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि कज्म कहते ही बंद हो जाने को है, रुक जाने को है, यानी वो पानी, वो मुश्क जो लबालब भरा हुआ है, जो मश्क जो है वो लबालब भरी हुई है, फिर उसको बंद कर दिया जाए। अंदर गम है, अलम है, जज्बात है, बहुत ही फराक है, बच्चे की, बेटे की जुदाई का इंतहाई एहसास है, लेकिन ये कि गले तक भरे हुए हैं, लेकिन रुक, खामोश। फा हुआ कजीम, और गम से दिल भर गया है लेकिन जबान बंद है, गुंग है, कोई जुमला नहीं, कोई बात नहीं, किसी से अपना रंज और गम बयान नहीं करते। और आप देखें, जब गुस्सा दिल में होता है, जब गम दिल में होता है, तो फिर क्या करते हैं कि जबान फजूल बोलने लगती है, गुस्से में, गम में, पता नहीं क्या क्या बोलती है, हाथ उठने लगते हैं, गम की कैफियत में पांव चलने लगते हैं, और इंसान जो है वो क्या करता है कि बाज़ूकात कहते हैं कि ये पागल हो गया, ये दीवाना हो गया है, वो सेंसेस में नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा खूबसूरत उनको ये टाइटल देते हैं, और क्या है, फहुआ कजीम, कि वो जो थे वो कजीम थे, वो दिल ही दिल में घुटे जा रहे थे, वो सबर का पैकर थे। और फिर क्या कहते हैं, कालू तल्लाही तफ्तहु तस्कुरु यूसुफा, अब बेटे जो है कहते हैं कि अल्लाह की कसम, तफ्तहु, कि आप तो याद ही करते जाएंगे। अब आप देखिए कि तफ्तहु जो कहना है इसके क्या मानी है, ये यहाँ पे ला तजालू के मानी में है। मैंने आपको बताया था ना कि ला तजालू खत्म ना होना, जायल ना होना, तो तफ्तहु के मानी क्या है, कि आप हमेशा, आप मुस्तकिल जो है वो, तज़कुरु यूसुफा, यूसुफ को खुदा की कसम याद ही करते जाएंगे, हत्ता तकून हरदन, यहां तक के जो है वो इसके गम में अपने आप को घुला देंगे। यानी ऐसा नहीं है कि आप जो हैं वो अलील हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि आप सकीम हैं, आप मरीज भी नहीं हैं, आपकी कैफियत क्या है कि अब हरद, कि आप तो बिल्कुल करीबुल मर्ग हैं, हिलाकत के करीब हैं। ऐसा मर्ज, मर्ज जब अपनी इंतहा को पहुंचता है तो इंसान जो है वो क्या होता है कि इतना दिल से लगाता है कि कमर ही टूट गई, कि फिर जो है वो मरने के करीब हो जाता है। तो कहते हैं हत्ता तकून हरातन, कि आप तो उसके गम में अपने आप को घुला ही देंगे, औ तकून मिनल हालिकीन, या अपनी जान जो है वो हिलाक कर देंगे, या अपने आप को जो है वो जो हिलाक होने वाले हैं उनमें शामिल कर लेंगे। यानी गोया के आप तो बहुत ही ज्यादा जो है वो आपकी बुरी हालत है। तो अब बच्चे जो हैं, बेटे जो हैं, वो अपने वालिद को समझाते हैं, और वो क्या जवाब देते हैं, قال انما اشكو بثي وحزني الى الله, बेशक मैं शिकवा करता हूं अपनी परेशानी का और अपने गम का अल्लाह से। और यही एक मोमिन का तुर्रा इम्तियाज होना चाहिए, जब किसी से तकलीफ पहुंचे, जब कोई बड़ी मुसीबत आए, जब किसी हादसे से दो चार हो जाए, जब कोई बहुत बड़ी गम की खबर मिले। और बाज़ूकात ये होता है कि हम तकलीफ की हालत में मुंह दर मुंह दूसरों को कहना शुरू करते हैं, दूसरों को सुनाना शुरू करते हैं, हाथ पांव उठाना शुरू करते हैं, गुस्से गुस्से में आते हैं, हम ज़बत नहीं करते। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम का कितना खूबसूरत किरदार है कि जो है वो क्या करते हैं कि तन्हाई के वक्त में बच्चों से अलग होकर अपने गम और अलम का इजहार अपने रब के आगे करते हैं। और लोगों, अल्लाह के सामने अपने दिल को खोलना, अपने اللہ سے باتیں کرنا، اپنے غم اور مصیبتوں کا اظہار کرنا، یہ بہت ہی اچھی بات ہے، یہ کوئی جو ہے وہ غلط بات نہیں ہے۔ اور آدمی جتنا اپنے رب کے آگے روئے گا، اتنا ہی اس کا رونا رب کی رحمت کو جوش دلائے گا۔ ایسا رونا جس میں شکوہ نہ ہو، جس میں شکایت نہ ہو، جس میں نہ شکری نہ ہو، جس میں اللہ کی نہ فرمانی نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت کو جوش دلاتا ہے۔ رونا دھونا تو وہ جو ہے وہ ممنوع ہے جس میں جو ہے وہ جو ایمان اور توکل کے جو وقار ہے اس کو مجروح کرتے، جو توکل کے خلاف ہو، جس میں بین ڈالے جاتے ہیں، شرک کے جملے بولے جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ میں تو یہ کام، میں اس صدمے کو برداشت کر ہی نہیں سکتی تھی جو پہاڑ اللہ نے مجھ پہ ڈال دیا ہے، اور خود نعوذ باللہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ظالم ہے، نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایسا کیوں کیا۔ گو کے صدمے، مصیبتیں، پریشانیاں مانگنی نہیں چاہیے، لیکن جب آ جائے تو پھر صبر کا پہاڑ بن جانا چاہیے، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام نظر آتے ہیں، اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، ہمیں یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ اور دعا کیا ہے؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنی پریشانی اور اپنی غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں، ان کو بنیامین کے تازہ صدمے نے یوسف علیہ السلام کے غم کو ہرا کر دیا۔ ایسا ہوتا ہے نا، زخم لگتے ہیں اور زخم پہ کھرنڈ آنے لگتا ہے، زخم بھرنے لگتے ہیں، اور پھر ایک اور چوٹ لگتی ہے تو پہلا زخم پھر سے ہرا ہو جاتا ہے۔ تو بالکل ایسا ہی ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے، ان کو حضرت یوسف علیہ السلام پھر سے جو ہے وہ یاد آنے لگے۔ اور یہاں پر جو ہے آپ یہ دو تین باتیں جس کو مجھے اور آپ کو سب کو سمجھنا ہے، وہ کیا ہے کہ ان کا یا اسفہ کہنا، ان کا قرآن کا یہ بتانا وَبْيَدَتْ عَيْنَاهُ، تیسرا قزیم، اور چوتھا ان کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ تو ان سب سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انتہائی درجے کا صبر کیا ہے، لیکن اللہ سے کٹے نہیں ہیں، اللہ سے جڑے ہوئے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اب بیٹے جو ہے وہ باپ کو ملامت کر رہے ہیں کہ خدا کی قسم آپ تو یوسف کو یاد ہی کرتے چلے جائیں گے، اور مسئلہ کیا ہے کہ وہ تو یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے۔ اور اسی لیے تو یعقوب علیہ السلام کے بارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان سے الگ ہو کے فتولا عنہم، سائڈ پہ ہو گئے، رونے لگے، اور پھر اپنے بیٹے کو یاد کرنے لگے اور اپنے رب سے فریادیں کرنے لگے۔ اور اپنے رب سے فریادیں کرنا، اللہ سے باتیں کرنا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اور اللہ سے اس کی رحمت کے دروازے کھٹکھٹانا، اپنے دامن کو پھیلانا، یہی ایک مومن کا جو ہے وہ بہترین اسوہ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ وَعَالَوْ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ سے، کہ وہ اس وقت اپنے بیٹوں کو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب، جتنا میں اپنے رب کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ یعنی اللہ کا معاملہ، اللہ سے میرا جو تجربہ ہے اور اللہ سے میرا جو تعلق ہے، وہ میں سمجھتا ہوں، تم نہیں سمجھتے۔ اور میں جو اللہ سے فریاد کر رہا ہوں، رو رہا ہوں، دامن کو پھیلا رہا ہوں، تو یہ کیا ہے، یہ بات میں جانتا ہوں، اور اس لیے میں رب کی رحمت سے بھیک مانگ رہا ہوں، اس لیے میں رب کی رحمت کے دروازے جو ہے وہ کھٹکھٹا رہا ہوں۔ اور اس موقع پر جو ہے، جو ان کا یہ ان کا کہنا کہ جو تم نہیں جانتے، اس کا مطلب کیا تھا کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ یوسف مجھ سے ملے گا، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کہ یوسف مجھ سے ملے گا۔ اور کیا کہتے ہیں، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اور کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹو جاؤ، اذهبوا آرڈر کا صیغہ ہے، جاؤ اور تلاش کرو اور توہ لگاؤ، بیرونی حالات معلوم کر کے کوشش کرو، کس کی توہ لگاؤ، یوسف کی اور اس کے بھائی بنیامین کی۔ वला तयसु मिर रूह अल्लाह, और अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। इन्नहु ला ययसु मिर रूह अल्लाह इल्ला अल कौमुल काफिरून। तो क्या कहते हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, इसकी रहमत से तो बस काफिर ही मायूस हुआ करते हैं। तो अब यहाँ पे पहले वो अल्लाह से बातें कर रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं, और अब बेटों से कहते हैं कि जाओ यूसुफ और बिन्यामीन को ढूंढ कर लाओ। तो इससे क्या बात पता चलती है कि याकूब अलैहिस्सलाम बेटों के सामने अपने दिल का राज खोल देते हैं और उनको बताते हैं कि मैं यूसुफ के मामले में अपने रब की रहमत से मायूस थोड़ी हूं। बड़े साफ लफ्जों में, निहायत प्यार के अंदाज में उनको कहते हैं, ए मेरे बेटो जाओ और यूसुफ और इसके भाई की टो लगाओ, कुछ तो पता करो। और फिर ये कि अल्लाह जो है वो मुश्किल कुशा है, अल्लाह जो कि रहमतें रहमतों रहमतों की बारिश करता है, मैं उसकी रहमत से मायूस तो नहीं हूं। और ये जो है ना फतहससु, इसमें ये मानी भी है कि जी जान लगाकर, जान की बाजी लगाकर ये काम करना, पूरी कोशिश करो उसको ढूंढने की, वो तुम्हें मिल जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों भाई जो है वो मिलेंगे, और ये बात भी कि यूसुफ जिंदा है। आप सोचे, ये है एक पैगंबर का ईमान, और गोया के रहमत इलाही का एक झोंका चलेगा और मेरी तमाम मुश्किलों को आसान कर देगा, क्योंकि काफिर है मायूस होते हैं, मैं थोड़ी। फलम मदखलु अलैही, और अब ये लोग जो हैं फिर मिस्र की तरफ जाते हैं और जो है वो दाखिल होते हैं, अलैही किस पर, यूसुफ अलैहिस्सलाम पर। अब तीसरी दफा जो है वो जा रहे हैं, है ना, पहली दफा अकेले गल्ला लेने गए, दूसरी दफा बिन्यामीन को साथ लेकर गए, तीसरी दफा जो है अब बाप के कहने पे फिर मिस्र का सफर करते हैं और कहते हैं, कालू बोलते हैं, या अय्युहल अजीजू, ए बादशाह, ए सरदारे बा इक्तदार, मस्सना, हमको छुआ है, वह अहलाना, और हमारे घरवारों को, अद्दुरु, मुसीबत में, यानी मुसीबत में हम और हमारे घर वाले जो हैं वो मुब्तिला हैं, वह जेना विविदात मुजातिन, और हम जो हैं हकीर सी पूंजी लेकर आए हैं, हम बड़ी सख्त मुसीबत में हैं, और जो कुछ भी हम पैसे लाए हैं, जो कुछ भी हमारे पास पूंजी है, वो बड़ी हकीर है। तो क्या करें आप, फाओफी लनल कैला, आप हमें पूरे गल्ले का नाप दीजिए, आप हमें भरपूर गल्ला अता कीजिए, वफा कीजिए आप हमसे, व तसद्दक अलैना, और हमें खैरात कीजिए, इन्नल्लाह यजजिल मुतसद्दिकीन, बेशक अल्लाह खैरात करने वालों को जजा देता है। तो अब आप देखिए कि अब जो है ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनको वो जानते नहीं है कि ये यूसुफ है, उनको जानकर जो है उनको जाकर ये कहते हैं कि बहुत थोड़ी सी हम पूंजी हकीर सी लेकर आए हैं और आप अब हम पर एहसान करें, खैरात करें। तो अब यहाँ पर खैरात के, एहसान के क्या मानी हैं, मुफस्सरीन ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि हमारे भाई बिन्यामीन को आजाद करके हम पर एहसान करें, खैरात करें। तो मानी क्या है कि हमारे भाई को जो है वो आजाद कर दें, और गोया कि यह बड़ी ही आपकी मेहरबानी होगी कि अगर आप हमारे भाई को जो है वो आजाद कर देते हैं, यानी गल्ला दे, बड़ी मेहरबानी है। पहले भी आपने हम पर बड़े एहसानात किए हैं, हम आपका शुक्रिया नहीं अदा कर सकते, लेकिन मजीद एहसान करें, अल्लाह आपको इसकी जरूर जो है वो जजा देगा। तो अब गोया के वो जाकर फिर जो है एक दरख्वास्त जो है वो अजीज मिस्र से करते हैं, और जो भरकर गल्ला देना है, इसमें ये चीज भी आती है कि इतना गल्ला देना जो हमारी जरूरत के लिए काफी हो, इसमें कमी ना करना, और बेशक अल्लाह जो है वो जो नेकी करते हैं, जो खैरात करते हैं, उनको जो है वो भरपूर बदला देता है, यजजी जजा देता है। قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, हल अलिमतुम मा फअलतुम बियूसुफ, क्या तुम्हें कुछ इल्म भी है कि तुमने यूसुफ के साथ क्या किया, वह अखी ही और उसके भाई के साथ, इज अन तुम जाहिलून, जबकि तुम जो थे वो जाहिल थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बात क्यों कही, उन्होंने ये क्यों कहा कि तुम्हें कुछ खबर भी है कि तुमने यूसुफ और इसके भाई के साथ क्या किया जबकि तुम जो थे वो जाहिल थे। तो मुफस्सरीन ये कहते हैं कि जब भाइयों ने जाकर जो है बड़ी आजी के साथ सदका खैरात की बात की और भाई की रिहाई की अपील की, साथ ही बाप के बुढ़ापे की भी, जोफ की भी और बेटे की जुदाई की भी जो है उसका जिक्र भी किया कि हमारे बाप पर क्या क्या गुजर रही है, और कहते हैं कि जब ये सारी कहानी अपने घर वालों की यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुनी तो उनका दिल भर आया, आंखें नमनाक हो गई, रोने लगे, और उस मौके पर आप जो थे अपने दिल की हालत के इंकशाफ पर जो है मजबूर हो गए। लेकिन भाइयों की ज्यादतियों का जिक्र उन्होंने बड़े इखलाक के साथ किया, बड़े बेहतरीन अंदाज में किया कि ये तुमने काम जब किया, तुमने यूसुफ और इसके भाई के साथ क्या किया कुछ तुम्हें पता भी है, और कैसे कहा इज अन तुम जाहिलून, जबकि तुम जाहिल थे, जबकि तुम नादान थे। तो आप देख लीजिए कि उनको बुरा भला नहीं कहा, उनको गालियां नहीं दी कि तुम बड़े जालिम थे, ये भी तो कह सकते थे ना कि तुम तो बड़े ही जालिम थे, बल्कि क्या है कि जो कहते हैं कि तुमने क्या किया, तो साथ ही भाइयों का भरम भी कायम रखते हैं, मुनासिब नहीं समझते कि ज्यादा कुछ कहें, बल्कि जहल जीम हालाम जिसके मानी क्या है कि बुरे जज्बात से मगलूब होकर तुमने जो है वो यूसुफ और उसके भाई के साथ बिन्यामीन के साथ जो है वो ये सुलूक किया है। तो इससे हमारे लिए अमल का क्या असूल निकलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैसा बेहतरीन सबर इखलाक और किरदार से नवाजा था। और दूसरी बात हमें जो पता चलती है कि वो अपने भाइयों से ये कहते हैं कि तुमने जो किनान में, तुमने जो अंधे कुएं में अपने भाई यूसुफ को फेंका था, तो असल में तुम वो जमाने जाहिलियत में तुमने ऐसा किया था, तुम ना समझ थे, तुमने जज्बात से मगलूब होकर ऐसा किया, तुम बुरे तो नहीं हो, बस तुमने जहालत में आकर जो है वो ऐसा किया है। तो और उस मौके पर जो है वो जब वो अपने भाइयों को ये बात कहते हैं कि तुम ना वाकिफ थे, और यही बात आप जो है सूरत यूसुफ की आयत 15 में पढ़ भी चुकी हैं कि जब उनके भाई उनको अंधे कुएं में फेंक रहे थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि वा अजमाऊ अन यजअलू फी गयाबतिल जुब्बी वा औहैना इलैही, और हमने वही की यूसुफ की तरफ, लतुनबियन्नहुम बिअम्रिहिम हाजा वहुम ला यशऊरून, के एक वक्त आएगा जब तू इन लोगों को इनकी ये हरकत जताएगा जब वो अपने इस फेल के नताइज से बेखबर होंगे, उनको पता भी नहीं होगा, और तू एक वक्त आएगा कि इनको जो है वो अपनी इनकी हरकत को तू जताएगा। तो यही जो है ये है इज अंतुम जाहिलून। पालू अन्ना का लंत यूसुफ, और वो फौरन पुकार उठे कि हाई क्या तुम यूसुफ हो, अंत यूसुफ قال انا يوسف وهذا اخي, उन्होंने कहा कि हाँ मैं हूँ यूसुफ और ये है मेरा भाई बिन्यामीन, قد من الله علينا, अल्लाह ने हम पर एहसान किया। और मुफस्सरीन कहते हैं कि यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है वो किस एहसान का जिक्र किया है, ये एहसान, और ये एहसान किस पर किया गया कि यहाँ पर जिक्र किया गया है कि ये जो मर्तबा और मकाम मिला है मुझे, और फिर मैं तुम लोगों से मिला हूँ, और हम सबका ये जमा होना इकट्ठा होना क्या है, कद मन्नल्लाहु अलैना। बाज कहते हैं कि ये अलैना से मुराद यूसुफ और बिन्यामीन है, और बाज कहते हैं कि सारे भाई मुराद हैं, कि सब पर अल्लाह ने एहसान किया। और हकीकत ये है अल्लाह तो बड़े ही एहसान करता है, लेकिन इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है, और बेहतरीन इंसान वो हैं मोहसिनीन, मुत्तकीन, मुतसद्दिकीन और पजीन काजमीन वो होते हैं जो अल्लाह के एहसानात को कभी किसी हाल में भी ना भूलते नहीं हैं। और यहाँ पे भी अब यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मौके पे अल्लाह के एहसान को याद करते हैं, जब मौका ये है कि भाइयों को बताया जाए कि तुमने तो ऐसा जुल्म मेरे साथ किया था, हैं खूब सुनानी चाहिए थी ना, लेकिन आप देखें कि जाहिल का लफ्ज जाहिलून और दूसरा कद मन्नल्लाहु अलैना, एहसानात और कभी कोई एक दफा कुछ ना खिलाए और कई दफा उसने खिलाया हो, और हम तो किसी की चाय की एक प्याली का शुक्रिया नहीं अदा कर सकते, लेकिन कभी एक दफा ना पूछे तो कितना उसके खिलाफ बुरा भला कहते हैं। कोई 10 दफा अच्छा खिलाए और एक दफा अच्छा ना हो, वो ठीक ना पका हो, तो कितना उसको बुरा भला कहते हैं। कोई 10 दफा खैरियत पूछ ले और एक दफा ना पूछे तो कितना बुरा भला कहते हैं। कोई 10 दफा ईदी दे दे, एक दफा ना दे, तो कहते हैं लो जी उसको नहीं पता ईदी देनी थी, उसको नहीं पता मुझे बुलाना था, उसको नहीं पता मुझे जोड़ा देना था। और हम भूल जाते हैं, और आप सोचें कि भाइयों ने क्या सुलूक किया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या खूबसूरत किरदार पेश करते हैं। अफसोस कि आज हमने लारा बुश को, लेडी डियाना को, और फिल्मी एक्टर्स को, और जो खिलाड़ी हैं उनको अपना रोल मॉडल बना लिया। कभी उनकी मुस्कुराहट, कभी उनके हेयर स्टाइल, कभी उनका जो भी कपड़ों का रख रखाव या अंदाज है, उन्हीं के पीछे जो है वो भागते हैं और दौड़ते हैं। हम भूल गए कि पैगंबर जो है उनका किरदार मेरे लिए बेहतरीन उसवा है, हमारे लिए बेहतरीन उसवा है। कद मन अल्लाहु अलैना, आप सोचे तो सही, क्या हमारे अंदर ऐसे एहसास पैदा हो सकते हैं कि कोई हमसे बहुत ज्यादती करे और हम उस जगह पे खड़े हों कि हम बुलंदी पर हैं, हम टेबल के ऊपर खड़े हैं और वो नीचे हैं। हम अब उनको जलील कर सकते हैं, रुसवा कर सकते हैं, बुरा भला कह सकते हैं, बदला ले सकते हैं, लेकिन उस मौके पे भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये कहना कि अंतुम जाहिलून इज अंतुम जाहिलून, और फिर ये कहना कद मनल्लाहु अलैना। और ये जो आयत 90 का आखिर है, मेरी बहनों ये सूरत यूसुफ का निचोड़ है। ये यूसुफ, हजरत याकूब और इन भाइयों के पूरे किरदार से जो हमें लेसन मिलता है वो है इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर फइन्नल्लाह ला युदीउ अजर अल मुहसिनीन। बेशक अगर कोई तकवा और सबर से काम ले तो अल्लाह के यहाँ ऐसे नेक लोगों का अजर मारा नहीं जाता। तकवा और सबर में यूसुफ और याकूब अलैहिस्सलाम की सारी कहानी को अल्लाह ने समेट कर रख दिया। तो पूरी जिंदगी का हासिल क्या है, इस पूरी कहानी का लेसन क्या है? तकवा और सबर। और लोगों सबर किसे कहते हैं? ये मोहसिनीन, एहसान के दर्जे की नेकी किसे कहते हैं? नफरतों का जवाब मोहब्बतों से देना। और नफरत की इंतहा कर दी भाइयों ने कि फेंका भी तो अंधे कुएं में फेंका, और इन्होंने मोहब्बत की इंतहा कर दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नेकी की इंतहा कर दी, इजहार भी किया तो बड़े वकार के साथ, बड़े इखलाक के साथ, बड़े प्यार के साथ, और साथ ही फिर अल्लाह का ये एहसान याद दिला रहे हैं कि अल्लाह ने हमें सब, तुमने तो जुदा किया था ना, यानी तुमने तो वो जहालत में कर लिया था, लेकिन अल्लाह ने हम सबको इकट्ठा कर दिया है, मिला दिया है। तो सूरत यूसुफ क्या है, बताती है, एक इंतहा भी दिखाती है, दूसरी इंतहा भी दिखाती है। और ये अल्लाह का एहसान है, कहां मैं गुलाम था, कहां मुझे मिस्र के तख्त पर अल्लाह ने पहुंचा दिया, और कहां फिराक था, कहां जुदाई थी, कहां मिलाप हो गया, है ना, कहां हसद है, नफरत का ठाठे मारता हुआ समंदर है, और कहां यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार है। तो मेरी बहनों, तकवा किसे कहते हैं? तकवा अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह से मोहब्बत का ये अंदाज कि इंसान जो है जो तो अल्लाह की नाफरमानी जो है वो उसको छोड़ दे, है ना। तो गोया के पूरी सूरत का निचोड़ क्या है, एहसान के दर्जे की नेकी, और जिसकी बुनियादी शर्त, एहसान के दर्जे की नेकी की बुनियादी शर्त तकवा और सब्र है। और मेरी बहनों, अल्लाह के नजदीक वही अमल कबूल होता है जिसमें तकवा है, और वो जिसमें सब्र हो। और तकवा और सब्र एहसान के दर्जे की नेकी लिए हुए हो और एहसान की रूह लिए हुए हो। बंदा जब इस तरह तकवा और सब्र का हक अदा करता है, और एहसान क्या है कि मैं और आप जो कुछ कर रहे हैं गोया के अल्लाह को देख कर कर रहे हैं, अल्लाह को हम देख रहे हैं। और अगर हम इस दर्जे को नहीं भी पा सकते तो ये यकीन तो रखें कम से कम कि अल्लाह मुझे देख रहा है। اور اللہ تو دیکھ رہا ہے اور اللہ کو دیکھنا ہے. کیوں؟ مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک ہے. تو احسان کے درجے کی نیکی کیا ہے کہ کوئی جب زیادتی کرے تو ہم جواب میں زیادتی نہ کریں. ہم اس بات کو مت بھولیں کہ اللہ کو حساب کتاب دینا ہے, اور اللہ ساری باتوں کے بارے میں ہم سے ضرور پوچھے گا کہ میرا اور آپ کا کردار کیا تھا, میرا اور آپ کا معاملہ کیا تھا. یہ لڑائیاں, یہ جھگڑے, یہ دنیا کی دوڑ میں مقابلہ بازیاں, یہ دوسروں کو نیچ دکھانا, دوسروں کو گرانا, اور سوسائٹی میں اور رشتہ داروں میں اور دوستوں میں اور کلاس فیلو میں یہ سوچنا کہ میرا سر اونچا ہونا چاہیے, میرے کندھے اپنے کندھوں کو چکانا کہ میں سب سے مجھے اونچا نظر آنا چاہیے, نہیں, مجھے اور آپ کو اللہ کی نظروں میں اپنا مقام اونچا کرنا ہے. کہ میرا رب, میں جو یہ عمل کر رہی ہوں, میرا رب مجھے کن نظروں سے دیکھ رہا ہوگا؟ کیا میری یہ ادا اللہ کو اچھی لگ رہی ہوگی؟ کہ میرا رب مجھ سے روٹھا تو نہیں جا رہا ہوگا؟ میں اپنے روٹھے رب کو کیسے مناؤں؟ میرا رب مجھ سے کیوں روٹھے؟ وہ جو اس زندگی کا حاصل ہے, وہ اس زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے. تو آئیے اپنے رویوں کا جائزہ لیں, آئیے احسان کے درجے کی نیکیاں کریں. اور سب لوگ پریشان ہیں, ہر شخص جو ہے مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے. پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا علاج کیا ہے, تقویٰ اور صبر. اور اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان کرنا, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, اگر آپ نے بہت اچھا پیپر بھی کیا, آپ نے بڑی اچھی پاور پوائنٹ کی, آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے, آپ نے گھر میں بڑا اچھا کردار دکھایا ہے, تو کیا اللہ آپ کے اجر کو ضائع کر دے گا؟ اگر دنیا میں کوئی آپ کے اجر کو ضائع کر بھی دیتا ہے, مثال کے طور پر اگر آپ کو ٹھیک نمبر نہیں بھی ملتے, اگر گھر میں آپ کو شابش نہیں بھی ملتی, اگر دوست آپ کو خوب جو ہے وہ واہ واہ شابش آپ کی نہیں بھی کرتے, گلے میں پھولوں کے ہار نہیں بھی ڈلتے, آپ کو بہت اچھا پرائز نہیں بھی ملتا, تو یہ کیوں بھول گئے؟ ہم یہ کیوں بھول گئے؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, کہ اللہ جو ہے وہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. اور یہ اتنا خوبصورت جملہ ہے جو صرف قرآن میں لکھا نہیں رہنا چاہیے, یہ میرے اور آپ کے دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو جانا چاہیے, جذب ہو جانا چاہیے. کیونکہ نوٹس بھی لے لیں, اور میں اور آپ جب عمل میں کمی کریں, اور یہی چیز مجھے اور آپ کو ڈھا دیتی ہے, مایوس, ڈپریشن, پھر عمل نہ کرنا, کوشش نہ کرنا, حسن سلوک نہ کرنا گھر کے اندر, خاندان, رشتہ داروں کے اندر, کہ میں جتنی نیکی کرتی ہوں اتنا ہی میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. تو یہ چیز اگر مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے جو کہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے کردار سے نظر آتی ہے, جیسے کرنیں بھی پھوٹتی, سورج آتا ہے ساتھ ہی ہر طرف سے اندھیرے سمٹ جاتے ہیں اور روشنیاں بکھر جاتی ہیں, ریز, ایمان کی ریز. تو کردار کی یہ ریز جو ہے یہ یوسف اور یعقوب علیہ السلام کے کردار سے میرے اور آپ کے لیے نکلتی ہیں, اور یہی میری اور آپ کی زندگی کا حاصل بنتا ہے کہ میں اور آپ نیکیاں کرنے میں کبھی جو ہے وہ پیچھا نہ رہیں. اور میرا اور آپ کا کردار کیا بنتا ہے, میرا اور آپ کا معاملہ کیا بنتا ہے, کہ کوئی خواہ کچھ ہی کیوں نہ کرے, اور جو بھی سوسائٹی میں جو برائیاں ہیں اس میں ہم کیا کریں, تو جلا وہ شمع اے دل جو بجھے کبھی نہ جل کے, ہے نا, اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ. تو یہ ہے میرا اور آپ کا کام. مرحلے یوں ہی طے تو نہیں ہوتے, قافلہ بہاروں کا کس چمن میں ٹھہرا ہے. تو یہ بہاریں, یہ چمن, یہ خوشبوئیں, یہ نیکیاں, یہ حسن سلوک, یہ اچھی تاریخ کا مرتب کرنا اس کے لیے کیا ہے, تقویٰ, صبر اور احسان کے درجے کی نیکی. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين, انہوں نے کہا با خدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت عطا کی, اللہ کی قسم تم کو اللہ نے ہم پر ترجیح دے دی, اور واقعی ہم خطا کار تھے. یہاں پہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے کردار میں بھی ایک بہت بڑا سبق ہے, اور وہ کیا ہے کہ وہ اقرار کرتے ہیں, وہ اعتراف کرتے ہیں. اور وہ کیا اعتراف کرتے ہیں, جب وہ یوسف علیہ السلام کی شان دیکھتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں, وہ اعتراف کرتے ہیں اپنی غلطی کا, کہتے ہیں واقعی خدا کی قسم اللہ نے تجھ کو ہم پر ترجیح دے دی, یعنی ہم نے تو تجھے کانٹے کی طرح اپنی نظروں سے ہٹانا چاہا, ہم نے تجھے اندھے کنویں میں پھینک کر تیرے قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہا, اور اللہ نے تجھے اتنا رتبہ، اتنا درجہ، تیرا ایسا اچھا اخلاق، تیرا ایسا اچھا کردار، واقعی اللہ نے تجھ کو ہم پر ترجیح دے دی. اور میری بہنوں، جس کو اللہ رکھنا چاہے اس کو کوئی چکھ نہیں سکتا، جس کو اللہ ڈبونا چاہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. تو اب کیا ہے کہ حضرت یوسف جو ہیں ان کی عزت کو، ان کی نیکی کو ان کے بھائی تسلیم کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بے شک ہم ہی خطا کار تھے. اور میری بہنوں، کبھی بھی یعنی صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے. اگر اب بھی وہ اپنی غلطی کا اقرار کر لیتے ہیں، اعتراف کر لیتے ہیں، تو یہ بڑی بات ہے نا. تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ جب غلطی ہو تو اس کا اقرار کرنا چاہیے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، تو بھائی جواب دیتے ہیں کہ ہم مان گئے کہ اللہ نے تمہیں فضیلت دی، اور ہم اتنے ذلیل اور رسوا کہ گندم لینے کے لیے تیرے در پر، اور آج تو اتنے اونچے مقام پر ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. فرعون کو جب اللہ نے غرق کرنا چاہا، وہ اپنے لو لشکر کے ساتھ نکل آیا اور کوئی اس کو بچا نہ سکا، ہے نا. اور ان کو اللہ نے عزت دینی چاہیے. کیسی حیثیت تھی کہ اندھے کنویں پھینکے گئے، اور اندھا کنواں کیا ہے؟ جس میں کوئی پانی لینے نہ جائے. جو آباد کنواں ہوتا ہے وہ کنواں ہوتا ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی اگر گر بھی جائے، مصیبت میں پڑ بھی گیا، تو کوئی نہ کوئی کسی نہ وقت، صبح نہ شام نہ دوپہر، کسی وقت جائے گا پانی نکالے گا. تو ہو سکتا ہے اس کی وہ چیخیں، اس کی فریادیں، اس کا رونا کسی کو سنائی دے. اندھے کنویں میں تو کوئی بھی نہیں جاتا، بھولا بھٹکا مسافر، کوئی قافلہ اگر چلا جائے، کیونکہ جو دکان میں کچھ ہے نہیں، جو دکان بند ہے، وہاں کون جائے گا کچھ لینے کے لیے؟ تو وہاں کس نے جانا تھا؟ غیابت الجب. لیکن اللہ نے وہاں سے ان کو نکالا. پھر انسانیت کی تذلیل غلام بنا کر بیچے گئے. اور لوگوں، غلامی ان لوگوں سے پوچھے جو غلام ہیں، مکی دور میں غلام، اور آج بھی انسان پھر غلام بن گیا ہے نا، کسی اور طاقت کا غلام بن گیا، اپنے نفس کا غلام بن گیا. تو غلامی، اور اللہ نے ان کو ایسے اونچے تخت پر پہنچایا. تو یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے ہی خطا کی تھی، کہ اللہ نے تجھے تو عزت دی اور ہم ذلیل ہیں. قال لا تسریب علیکم اليوم. اب یوسف علیہ السلام بڑا ہی خوبصورت جواب دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اے میرے بھائیو، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں. اور یہ جو تسریب لفظ ہے، تسریب لفظ جو ہے سارا با، آنکھوں کی چربی کا چھیل دینا، جیسے آنکھوں کی چربی کا چھیل دینا، یعنی کسی کو برا بھلا کہنا، کسی پر ملامت کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا. لیکن اب وہ چاہتے تو یہ کر سکتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں آج تم پر کوئی گرفت نہیں، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں. یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے. وہو ارحم الراحمین، اور سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ تمہارا جو بھی میرے ساتھ سلوک تھا، جو بھی تمہارا معاملہ تھا جو ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. لا تسریب علیکم اليوم، آج تمہیں کوئی پکڑ نہیں. دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے. وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یہاں عمل کا بڑا اچھا ایک اصول نکلتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جاؤ جو ہے ٹھیک ہے، میں اسے بدلہ نہیں لیتی، ٹھیک ہے چلو میں اس بات کو مان لیتی ہوں، بٹ دل سے نہیں یہ بات نکلے گی. ہم کیا کہتے ہیں؟ دل سے نہیں اس کو نکال سکتے. اور وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے تمہیں معاف کیا، صرف اتنا نہیں کہتے، کہتے اللہ بھی تمہیں معاف کرے. سوچیں تو صحیح کہ اللہ کے آگے اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں کہ اللہ میرے بھائیوں کی خطا کو تو معاف کر دے. وہ بھائی جنہوں نے نفرتوں کے انبار کھڑے کر دیے، جنہوں نے نفرتوں کے بیج بوئے، جنہوں نے ان کو مارنا چاہا، اب وہ ان کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہاری مغفرت کر دے. اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کوئی کتنی ہی زیادتی کیوں نہ کرے، لیکن یہ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ فیاضی کے ساتھ ان کو معاف کرنا چاہیے، ان پر کوئی الزام نہیں پھر دھرنا چاہیے، اور اللہ سے بھی معافی کی ان کے لیے دعا مانگنی چاہیے، ہے نا. اور چونکہ اب وہ اس وقت انہوں نے خود بھی تو کہا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، وہ اپنی غلطی کا اقرار بھی کر رہے ہیں نا. اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن قریش کے لوگوں کو مخاطب کر کے یہی بات تو کہی تھی، وہ قریش والے جنہوں نے آپ پر اوجڑی ڈالی، شاہر کاہن مجنو اور دیوانہ کہا، آپ کو مکہ سے نکال دیا، کئی صحابہ جو تھے ان کو شہید کیا اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، وہی آج آپ کے سامنے سرنگوں ہو کر کھڑے ہیں، اور اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ تو بولے آپ شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں. آپ نے فرمایا میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، اور وہ کیا ہے؟ لا تصریح علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کوئی الزام نہیں. کاش کہ زندگی میں کوئی لمحہ مجھے اور آپ کو ایسا نصیب ہو جائے، کاش کہ ہم بھی کسی کے ساتھ ایسا ہی اس نے سلوک کریں. اب کہتے ہیں اذهبوا بقمیصی، کہ میری یہ قمیض لے کر جاؤ، اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں میری یہ قمیض لے کر جاؤ، حاذا یہ، فالقوه علی وجه ابی، اور اس کو اپنے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا، یاتی بصیرا، اس کی بینائی لوٹ آئے گی. اور کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میری یہ قمیض لے کر جاؤ اور جب تم اس کو اپنے باپ کے منہ پر ڈالو گے تو وہ دیکھنے لگے گا. وَاتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس جو ہے وہ لے آؤ. تو آپ جو ہیں یہ بات بھی آپ پہلے پڑھ چکی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ یوسف کے غم میں اندھے ہو گئے. یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، ہے نا، کہ جب وہ بھائی جو تھے وہ جنگل گئے اور آ کر کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا اور خون لگی ہوئی قمیض حضرت یوسف کی دی، تو قمیض اور یوسف کے غم نے ان کو اندھا کر دیا، اور اب دوبارہ ان کی ان آنکھوں کا علاج کیا ٹھہرا کہ یہ قمیض جب ڈالیں گے تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں دوبارہ ان کی روشنائی جو ہے وہ پلٹ آئے گی. تو یہاں پر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور اپنے سب گھر والوں کو لے کر آ جاؤ. فلما فصلت العیر، اور جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا، قال ابوہم، آپ سوچیں کہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا اور ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، کہ میں مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کہیں اگر لوگ کہیں تم لوگ اگر مجھے یہ نہ کہنے لگو کہ میں تو بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں، میں تو بڑھاپے کی وجہ سے انہونی باتیں کر رہا ہوں، یعنی تم مجھے تفندون سمجھ کر میرا مذاق نہ کرنے لگو. اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی کی شان کے صدقے صدقے جائیں کہ جب یوسف علیہ السلام کنویں پڑے تھے گھر کے دروازے پر تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی خوشبو نہ آئی. یعنی گویا کہ جب وہ قریب تھے تو کچھ پتا نہ چلا، اور اب وہ میلوں کے فاصلے پر ہیں، اور اب جو ہے ادھر سے چلا ہے قافلہ، قمیض روانہ ہوا ہے اور ان کو خوشبو آنی شروع ہو گئی. تو میری بہنوں اصل بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی تھا یہ اللہ کی بخشی ہوئی عنایت تھی، یہ اللہ کا معجزہ تھا، اور اللہ انبیاء کرام کو غیر معمولی قوتیں عطا کیا کرتا ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے وہ یہی بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ اب حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جسم سے اترا ہوا کرتا ہی کیوں نشانی کے طور پر بھیجا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ایسی بات ہے کہ جس کا تعلق جو ہے وہ جذبات سے ہے، اور جذبات کی تاثیر اور تاثر جو ہے اس کے کرشمے حیرت انگیز شکل میں نمودار ہوا کرتے ہیں، اور عقل اس کی توجیہ بیان کرنے سے قاصر ہو جاتی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کو خبر ہو جائے کہ ان کا جو ہے وہ جو बेटा है उनसे मिलने वाला है। कालू वो बोले ताल्लाही इन्नका लफी दलालिकल कदीम, के घर के लोग उनके जो पास थे कहने लगे खुदा की कसम आप तो अभी तक पुरानी जो है वो भूलपन में है, उसी पुराने खबत में है। यानी उनका घर वालों का क्या कहना था कि आप जो बात कर रहे हैं ये तो ऐसे है जो कि बिल्कुल ही जो है वो नामुमकिनात में से है। ये कैसी बात है कि वो इतनी पुरानी बात, यानी आप उसी पुरानी गलती पर हैं कि गोया कि यूसुफ आज भी जो है वो जिंदा है। तो यानी यहाँ पे उनका ये कहने का क्या मतलब था कि दलाल से मुराद यहाँ पे मोहब्बत और जुनून की वो कैफियत है जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटे यूसुफ के साथ थी। बेटे कहने लगे कि आप अभी तक यूसुफ की मोहब्बत में गिरफ्तार है, इतना तवील अरसा गुजर जाने के बाद यूसुफ की मोहब्बत आपके दिल से नहीं गई, अभी तक उसको याद करते हैं। ये तो अजीब बात है। फलम्मा अंजा अल बशीरू, और फिर जब खुशखबरी लाने वाला आया और कहते हैं कि ये आपका वो बेटा था जो पीछे रह गया था ना, ये वो बेटा था जिसने ये कहा था कि अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं फलन अब्रहल अर्दा हत्ता याजन अली अभी औ याकुम अल्लाहु ली वहुवा खैरुल हाकिमीन, उसने ये कहा था ना। तो अब मौका आया है कि अब वो जाता है यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज लेकर और उसको जाकर क्या करता है, अलकाहू अला वजह ही यानी उसके चेहरे पर, याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाल देता है। फरतद्दा बसीरा, और उनकी बेनाई लौट आती है। तो यानी फिरना लौटना, काला अलम अकुल्लकुम, तब जो है याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं नहीं तुमसे कहता था, अलम अकुल्लकुम, क्या मैंने नहीं तुमको ये बात बताई थी, इन्नी आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, कि मैं अल्लाह की तरफ से वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो गोया के मेरे पास एक जरिया है जो इल्मे वही का है जो तुम में से किसी के पास नहीं है, और वही के जरिए अल्लाह ताला अपने पैगम्बरों को हालात से हस्बे मशीयत या फिर मसलहत, हालात के मुताबिक अल्लाह ताला अपने पैगम्बरों को आगाह करते रहते हैं। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो है वो ये बताते हैं कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, और गोया के वो जो कहते थे ना, जब इन्होंने बेटों ने कहा कि उसको जो है वो उसने खा लिया है भेड़िए ने, और फिर कमीज सारी वो दिखाई खून वाली, तो उस वक्त भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जो है उनको क्या जवाब दिया था, है ना। उस वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जो बात कही थी वो ये कहा था कि एक तो मैं इस पर सबर करता हूँ, और दूसरा ये कि वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, कि मैं उस पर जो है जो कुछ तुम बातें कर रहे हो इस पर मैं अल्लाह से मदद मांगता हूँ, है ना। और दूसरी बात जो हमें पता चलती है कि वो अल्लाह ताला के साथ जो उनका रिलेशन था जो एक पैगंबर का होता है, तो इसलिए उनको जो बात पता थी उनके बेटों को वो बात तो नहीं पता थी। और जब वो यानी गोया कि अल्लाह ताला ने उनको ये बात भी बता दी थी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि यूसुफ जो है वो तुझे मिलेंगे, और फिर उनका वो ख्वाब का देखना, है ना, ये सारी बात इसकी ताबीर में जो है वो आती है। तो वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, जो मुझे पता है वो तुम्हें नहीं पता। पालू सब बोल उठे या अबाना ए हमारे अब्बाजान, इस्तग़फिर लना, आप हमारे लिए जो है वो बख्शिश मांगिए, ज़ुनूबना हमारे गुनाहों की, इन्ना कुन्ना ख़ातेईन, वाकई हम खताकार थे। अब आप देखिए कि अब सारे भाई जो हैं अपने वाले से जो है वो बख्शिश की दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह ताला से आप हमारे गुनाहों की माफी मांगे, और साथ ही जो है वो इस बात का इकरार करते हैं कि हमने बहुत बड़ी जो है वो गलती की है। तो पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने इन्होंने गलती का इकरार किया है, अब अपने वालिद के सामने भी गलती का इकरार भी करते हैं और गुनाहों की माफी मांगते हैं। तो इससे ये बात पता चलती है कि जब भी किसी को तौफीक हो जाए कि ये मान जाते हैं कि हम जो थे वो खता पर थे, तो ये बहुत अच्छी खूबी होती है। गलती इंसान से हो सकती है, गुनाह इंसान से हो सकता है, इंसान है, खता खताओं का पुतला है, लेकिन जब गलती हो जाए तो गलती का इतराफ करना, उसको कबूल कर लेना, ये बड़ी अच्छी बात है। शैतान ने गलती का इकरार नहीं किया था ना, तो क्या हुआ? फाबा वस्तकबरा फकाना मिनल काफिरीन। आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई, उन्होंने इकरार किया और उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कर रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, है ना, तूने अगर माफ ना किया तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। तो इससे ये बात भी पता चलती है कि जब भी गलती हो तो उसको जरूर एडमिट करना चाहिए, कभी डिनाई नहीं करना चाहिए, उसका इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इकरार करेंगे तो फिर इस्लाह होगी ना, फिर इस्तगफार भी करेंगे। जब इकरार ही नहीं करेंगे तो फिर इस्लाह और तौबा और इस्तगफार के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। तो यहाँ पे वो अपने वालिद के सामने भी इकरार करते हैं और साथ ही जो है वो दुआ की दरख्वास्त करते हैं। और ये बहुत अहम बात है कि दूसरों को कहना कि आप मेरे लिए जो है ना इस्तगफार करें, आप भी मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, ये अच्छी खूबी है। काला सऊफा अस्तगफिर लकुम रब्बी, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं अपने रब से तुम्हारे लिए जल्दी ही माफी की दरख्वास्त करूंगा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, वाकई वो बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। अब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आप सोचें कितना खूबसूरत किरदार है इनका ना। मैं सोचती हूँ बच्चों से छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, वालदैन कता ताल्लुक कर लेते हैं, आग करने का ऐलान कर देते हैं, हालांकि जो भी विरासत के हिस्से हैं ये तो अल्लाह ने मुकरर कर दिया है। नसी मफरूदम मिन अल्लाह, फरीदतम मिन अल्लाह, वसीयतम मिन अल्लाह, आप पढ़ चुकी ना सूरत निसा में, तो उसमें कोई अपनी मर्जी से कमी बेशी नहीं कर सकता, लेकिन वालदैन कहते हैं जाओ तुम्हारा मुंह नहीं देखना, तुमसे बात नहीं करनी, तुम्हें ये देना ही नहीं, फला मेरे जनाजे पर ना आए, है ना। लेकिन कैसी शफकत फितरी का ठाठे मारता हुआ समंदर है, इतनी लंबी जुदाई, आंखें अंधी हो गई, प्यारा बेटा इतना अरसा जुदा रहा, इसके बावजूद भी अब वो गलती का इकरार कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, उनको कोई बुरा भला नहीं कह रहे, तो तुम कितने जालिम हो, तुम कैसे हो, तुमने कैसी कैसी ज्यादती की मेरे साथ, तुम्हें एहसास ही ना हुआ तुम्हें बाप की कोई इज्जत एहतराम, तुम्हें कुछ भी लिहाज ना तुमने किया, कुछ भी नहीं कहते, उनकी दरखास्त को कबूल कर लेते हैं और वादा करते हैं कि मैं तुमसे तुम्हारे बारे में अपने रब से गुनाहों की माफी की दरख्वास्त करूंगा। सौफा के मानी क्या है? अनकरीब। ये क्यों नहीं कहा कि फौरन, सौफा क्यों आया? इसकी वजह यह है, मुफस्सरीन ये कहते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम चाहते थे कि अपने बेटों के लिए खास एहतमाम के साथ खास वक्त में जो है ना दुआ करें, वो वक्त जबकि दुआ कबूल हो जाए, और आखिरी पहर रात का खास वक्त है दुआओं की कबूलियत का ना। तो गोया के यानी जब मैं अपने रब से आपके लिए माफी की दरख्वास्त करूं तो मैं चाहता हूं कि खास एहतमाम करूं, खास वक्त हो, खास जगह हो, ताकि दुआ मेरी कबूल हो जाए और वाकई अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे। कितनी खूबसूरत बात है, इन्नहु वल गफूर रहीम, और बेशक के वो बड़ा ही बख्शने वाला और रहम करने वाला है। सही बुखारी और मुस्लिम की भी हदीस है कि अल्लाह ताला हर रात के आखिरी हिस्से में जमीन से करीब तर आसमान पर जो है वो नजूल फरमाते हैं और ये ऐलान करते हैं कौन है जो मुझसे दुआ मांगे कि मैं इसको कबूल कर लूं, कौन है जो मुझसे मगफरत तलब करे और मैं इसकी मगफरत जो है वो कर दूं। बाकी अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है, और हमें भी अपने दामन को फैलाना चाहिए और जिनसे दुख पहुंचे, जिनसे तकलीफ पहुंचे, उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला तू इनको माफ कर दे, और खुद भी दिल से उनको माफ कर देना चाहिए। ये है तो मुश्किल, लेकिन मेरी बहनों ना मुमकिन तो नहीं है ना। और ये है पैगंबर का उस्वा, और ये है सूरत यूसुफ का पैगाम। फलम्मा दखलू अला यूसुफा, फिर जब ये लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, आवा इलैही अबा वही, तो इसने अपने वालदैन को अपने पास बिठा लिया। तो आप देखिए कि अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपने वालदैन को अपने पास बिठाते हैं। फकालद खुलू मिस्रा, और अपने घर वालों से कहते हैं कि चलो अब शहर में चलो, इंशा अल्लाह आमिनीन, अल्लाह ने चाहा तो अब अमन चैन से रहोगे। बाइबल का बयान है कि सब लोग जो खानदान के थे इस मौके पर जमा होकर मिस्र गए, ये 67 थे, इस तादाद में दूसरे घरानों की उन लड़कियों को शुमार नहीं किया गया जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के यहाँ ब्याही हुई आई थी। उस वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र 130 साल थी और इसके बाद वो मिस्र में 17 साल जो है वो जिंदा रहे। तो अब आप देखिए कि गोया के यानी वो 67 हो या जितने भी, बहरहाल उनके खानदान के पूरे लोग जो हैं वो वहां पर जो है वो जमा होते हैं और उस मौके पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालदैन के साथ बड़ी इज्जत करते हैं, उनको जो है वो अपने पास बिठाते हैं। तलमूद में है कि जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आमद की खबर दारु सल्तनत में पहुंची तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सल्तनत के बड़े बड़े जो ओहदेदार और अमीर थे और जो यानी बड़े बड़े जो मनासिब पर थे उनको और फौज को लेकर इनके इस्तकबाल के लिए निकले और बड़े तस्को एहतशाम के साथ इनको शहर में लाए। वहां वो दिन जश्न का दिन था, औरत मर्द बच्चे सब इस जुलूस को देखने के लिए इकट्ठे हो गए, सारे मुल्क में जो है वो खुशी की लहर दौड़ गई। तो तौरात से भी यही बात पता चलती है कि उन्होंने जो है अपने खानदान का इस्तकबाल शहर से बाहर निकल कर किया और बड़ी शान के साथ अपने घर वालों को शहर में लेकर आए कि एक जश्न की सूरत पैदा हो गई। और यहां पर भी हमें क्या बात पता चलती है, एक तो आवा इलेही अबा वही, अपने पास अपने वालदैन को ला बिठाया। और इसमें देखें कि अबा वही से मुराद बाप भी है माँ भी है, यानी स्टेप मदर के साथ हमारे यहाँ क्या सलूक किया जाता है, बच्चों की यकीनन आजमाइश होती है जिनकी माँ दुनिया से चली जाती है, लेकिन उस औरत की भी तो आजमाइश होती है जो उस जगह पर ब्याह कराती है ना, दोनों की आजमाइश होती है ना, दोनों को मोहब्बत और प्यार की जरूरत होती है, दोनों की इज्जत और एहतराम और उसके हकूक के मिलने की जरूरत होती है। तो क्या पता चला कि ये नहीं कहा कि नहीं स्टेप मदर ने, ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, दोनों को उनको उन्होंने अपने पास बिठाया और साथ ही ये तसल्ली भी दी कि अब आप परेशान ना हो, बल्कि क्या है कि हम जो हैं वो अब आप अल्लाह ने चाहा तो अमन और चैन से रहेंगे। ये एक दुआ है, ये एक उम्मीद है जो कि अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को है। तो गोया के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे वो बहुत ही ज्यादा अपने खानदान वालों से मोहब्बत करते थे और जिस जगह पर थे इस जगह पर अब ये नहीं कि अपने घर वालों को भूल गए, किसी को भी नहीं भूले। इससे ये बात पता चलती है कि जब भी किसी अच्छे मकाम पर पहुंचे तो पिछलों को भूलना नहीं चाहिए, बूढ़े वालदैन ओल्ड हाउसेज में हैं या फिर ये कि मतलब माएं तरसती रह जाती हैं, बाप इंतजार करते रहते हैं, दरवाजा देखते रहते हैं कि कभी मेरे बच्चे आए और हमें मिल जाएं, है ना। तो इस्लाम में मदर डे फादर डे का तस्वुर नहीं है कि कभी साल में एक फूलों का गुलदस्ता, कभी साल में एक दफा विश कार्ड जो है वो वालदैन को देना, नहीं, हर घड़ी हर आन, क्योंकि वालदैन की खिदमत से जन्नत जो है वो मिल सकती है, वालदैन तो जन्नत है, और बाकी रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करना।